لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ، مگر جن مشرکوں نے تم سے عہد کیا تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ثم لم ينقصوكم، اور پھر انہوں نے کچھ قصور نہ کیا، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم، اور مدد نہ کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، کسی ایک کے بھی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورا کرو ان کا عہد ان کے وعدے تک. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احتیاط کرنے والے کو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقی کو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ سے ڈرنے والے کو. متقی کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اس مبارک آیت کے اندر بھی پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے عہد توڑا تھا، اب مشرکوں کو نکال دیا جائے حرم میں سے، مگر مشرکوں میں سے جنہوں نے عہد کو پورا کیا، اور یہ عہد ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلا دیا جائے، یہ کون سا عہد تھا؟ یہ صلح حدیبیہ کے وقت والا عہد تھا. جی مسلمان جس کے ساتھ چاہے ان کے ساتھ، ان کو جس قبیلے کو چاہے اپنا حلیف بنا لیں، اور کافر جن قبیلے کو چاہے حلیف بنا لیں، اور 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، مگر مسلمانوں کے ایک قبیلہ جو ان کا حلیف تھا، اس پر کافروں کا ایک حلیف قبیلے نے حملہ کیا اور قریش نے مکہ نے ان کی مدد کر دی، تو معاہدہ انہوں نے توڑ دیا. مگر کچھ ایسے مشرکوں میں سے تھے جنہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا، انہوں نے مدد نہیں کی اپنے حلیف کی، تو جنہوں نے نہیں توڑا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ جو معاہدے کی مدت ہے، اس مدت تک اس معاہدے کو قائم رکھا جائے جس مدت تک ان کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. وہ کہ یہ معاملہ غیر مسلم کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، مگر کافروں کے ساتھ بھی جو عہد کیا جائے اس کو پورا کرنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. کافروں کا عہد توڑنا بھی بد عہدی اور تقوی کے خلاف سمجھا جاتا ہے. اور یہاں اللہ نے ایک بہت ہی اہم اصول بیان کر دیا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تقوی والوں کو پسند فرماتے ہیں، گناہ سے بچنے والے سے اللہ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. عام طور پہ ہمارے ذہن میں ولی کی تعریف یہ ہے کہ ولی شاید وہ ہوگا جو آسمانوں میں اڑتا ہوگا، یا ولی وہ ہوگا جو پانی پہ چلتا ہوگا. ولی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ولی آسمانوں میں اڑتا ہوگا یا پانی پہ چلتا ہوگا، بلکہ ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہوگا. تو کئی مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن اولیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے، دنیا میں کوئی ان کو جانتا نہیں ہوگا، پہچانتا نہیں ہوگا، مگر خاموشی سے گناہوں سے بچی ہوئی زندگی گزاریں گے، اور قیامت کے دن اولیاء کرام کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وہی مقام ہوگا جو اولیاء کرام، مشہور اولیاء کرام کا مقام ہوگا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لوہار ہوتا تھا، अब वो लोहार जो है पूरा दिन लोहा कूटता था, लोहा तोड़ता था, बड़ी ही फिजिकल जॉब थी, बड़ी ही मुश्किल मुशक्कत वाली नौकरी थी। सुबह से शाम तक लोहे को कूटता, रात घर पहुंचता तो थका हुआ होता, बड़ी मुश्किल से इशा की नमाज पढ़ता, खाना खाता, और इस थकावट में नींद आ जाती। जिस वक्त सोता उस वक्त इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्ला अलैह अपनी रात की इबादत के लिए छत पे तशरीफ ले जाते। अब ये हजरत का पड़ोसी था, हर रोज रात को देखता कि हजरत इशा के बाद खाने पीने से फारिग होने के बाद रात भर इबादत करने के लिए छत पे तशरीफ ले जाते हैं, तो देखता कि पूरी रात हजरत इबादत कर रहे हैं। अब खुद इतना थका हुआ होता कि लेटे लेटे देख तो लेता कि हजरत ऊपर तशरीफ ले गए हैं, मगर इसी हाल में सो जाता। कभी कभी अल्लाह को ये कह के सोता कि या अल्लाह मेरे ऊपर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लोहा तोड़ता हूँ, लोहा कूटता हूँ, मुशक्कत वाला काम करता हूँ। ए अल्लाह, अगर मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना होती, अगर मुझे ये मुशक्कत वाला काम ना करना पड़ता, तो ए मेरे मालिक, मैं भी अहमद इब्ने हम्बल की तरह तेरी इबादत जरूर पूरी रात करता। तो कभी कभी अपने दिल में लेटे लेटे अल्लाह को ये कहता कि अल्लाह हिम्मत नहीं है अब खड़े होने की, मगर अगर बीवी बच्चों की ये जिम्मेदारी सर पे ना होती, इतना मुशक्कत वाला काम ना होता, तो यूं इबादत करता जैसे अहमद इब्ने हम्बल कर रहे हैं। तो पूरी जिंदगी यही मामला रहा, और कुछ वक्त के बाद ये लोहार जो है ये फौत हो गया। अल्लाह, किसी ने इस लोहार को ख्वाब में देखा तो पूछा कि आगे तेरा मामला क्या बना, तो ख्वाब में ही उस लोहार ने जवाब दिया कि मेरी इस चाहत की वजह से कि मैं भी अहमद इब्ने हम्बल की तरह रात को इबादत करूं, अल्लाह ने मुझे वही मकाम दे दिया जो अहमद इब्ने हम्बल को दे दिया। अल्लाह, बात यह है कि ये जो तकवा है ना, शौक इबादत, गुनाह से बचने की हिम्मत जिसने कर ली, वही अल्लाह का दोस्त है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो दुनिया में मशहूर नहीं होंगे, मगर कयामत के दिन मशहूर अल्लाह वालों की सफ में खड़े होंगे कि उन्होंने तकवे वाली जिंदगी गुजारी और अल्लाह ने तकवे वालों से मोहब्बत का ऐलान कर दिया है। हमारे अकाबरीन का एक मशहूर कौल है मुत्तकी लोगों के बारे में कि आसमान की जीनत सितारों से है और जमीन की जीनत परहेजगारों से है। आसमान की जीनत सितारों से है और जमीन की जीनत जो है वो परहेजगारों से है। मुत्तकी शख्स से चार कुरआनी वादे अल्लाह ताला ने फरमाए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इस मुत्तकी शख्स से मोहब्बत फरमाते हैं, तो ऐसे शख्स से अल्लाह ने कुरआन में चार वादे कर लिए। और पहला वादा, वमन यत्तकिल्ला युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही। पहला वादा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन यत्तकिल्ला, जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इससे यहां दो बातें पता चली, एक तो ये कि ये जो मुत्तकी शख्स होता है, ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल कोई गुनाह नहीं होगा, बतकाजाए बशरियत, इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते उससे भी गलती हो सकती है। आजकल सुबह की मजलिस में नफ्स का तذکرہ हो रहा है, और इस नफ्स के बारे में अकाबरीन ने फरमाया कि ये नफ्स जो है इसकी अगर इसलाह हो भी जाए तो भी इस नफ्स में शरारत रहती है। तो तो ये मुमकिन है कि कोई शख्स तक्वा वाली जिंदगी गुजार रहा हो और फिर उससे कोई गुनाह हो भी जाए, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई हैरानगी नहीं है। मगर अल्लाह ताला इस मुत्तकी शख्स से मोहब्बत फरमाते हैं तो आपने ऐलान कर दिया कि वमय्यत्तकिल्ला, कि वैसे तकवा वाली जिंदगी है, अगर गुनाह हो गया युकफिर अनहु सय्यातिही, अल्लाह उसके गुनाहों को जल्दी माफ फरमा देंगे। तो चार कुरआनी वादे अल्लाह ने तकवे वाले शख्स के साथ रख कर दिए, जो शख्स गुनाह से बच के जिंदगी गुजारेगा। दूसरा वादा अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना तक़ौ यजअल्लकुम फुरकाना, कि जो शख्स तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसको फुरकान अता फरमाते हैं। फुरकान कहते हैं फरासत को, कि उसको बहुत गहरी जो है वो फरासत नसीब होती है, बहुत ही गहरी समझ बूझ नसीब होती है। वो चीजें वो देख लेता है, समझ लेता है, जो आम बंदे समझ नहीं पाते। चुनाचे तरगीब तरहीब में ये वाकया है हजरते उमर रजी अल्लाह के दौरे खिलाफत का, कि आपके दौरे खिलाफत में हजरते अली रजी अल्लाह अन्हों ने ये ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं हजरत अली, कि फजर की नमाज वो पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में आए और नबी अलैहि सलात वसलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई, बिल्कुल अल्लाह के नबी के पीछे खड़े होके पहली सफ में नमाज अदा की, पूरी नमाज ख्वाब में देखी। नमाज के बाद नबी अलैहि सलात वसलाम की आदत मुबारक थी कि फजर की नमाज के बाद आप नमाजियों की तरफ रुक करके बैठ जाते, तो इसी तरह आपने नमाजियों की तरफ रुक करके तशरीफ फरमा हो गए। इतने में एक औरत आई और उसने बाहर से आपको एक थैला जो है वो खजूर का हदिया दे दिया। अभी आप मुसल्ले पे ही बैठे थे, ये वो वक्त है जब मस्जिद नबवी के ना दरवाजे थे ना दीवारें थी, और खजूर के तनों के ऊपर उसकी छत डाली हुई थी। तो औरत आई और उसने आकर आपको ये थैला जो है वो हुजूर का हदिया किया। ये ख्वाब देख रहे हैं हजरत अली, और उस खजूर के थैले में से आपने दो खजूरें निकाली और हजरत अली को दी। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने वो दो खजूरें उसी वक्त ली और खाई खा ली और मुझे बड़ी खुशी हुई, आंख खुल गई। आंख खुल गई तो और भी ज्यादा खुशी हुई कि ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज्यारत हुई, उनके पीछे नमाज भी अदा की, उनके मुबारक हाथों से बड़ी मजे की लजीज खजूर जो है वो खाने को भी मिली। जब आंख खुली तो तहज्जुद का वक्त था, वुजू करके थोड़ी देर बाद नवाफिल अदा करके मस्जिद में तशरीफ ले गए। मस्जिद में फजर की नमाज के लिए जब तशरीफ लाए तो हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए। अजीब मामला ये हुआ कि जिस तरह ख्वाब में अपने आप को देखा था, जहां खड़े थे ख्वाब में अल्लाह के नबी के पीछे, उसी जगह पे जगह मिल गई हजरत उमर के पीछे। उनकी हैरानगी की इंतहा न रही कि ख्वाब में जो आयात और जो सूरतें नबी अलैहि सलाम ने फजर की नमाज में आपने पढ़ी, वही आयात और वही सूरतें हजरत उमर ने पढ़ दी। अल्लाह अकबर, हैरान हो गए कि अभी ख्वाब में यही देखा कि अल्लाह के नबी ने ये आयतें पढ़ी फजर की नमाज में, और यही आयतें हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने भी पढ़ दी। फिर इसी तरह नमाज मुकम्मल हुई तो नबी अलैहि सलातु वसलाम की मुबारक सुन्नत पर अमल करते हुए हजरत उमर भी नमाजियों की तरफ रुक करके बैठ गए। और हैरानगी उनको उस वक्त हुई जब एक औरत बद्दू एक खजूर का थैला लेके हजरत उमर के करीब आई और वो थैला आपने आगे रख दिया कि ये आपके लिए हदिया है, खजूर का थैला। हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है, हत्ता के हैरानगी और बढ़ गई जब हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने उस खजूर के थैले में से दो खजूरें निकाली और वो हजरत अली को पेश की। हजरत अली ने वो खजूरें भी खाई और बहुत ही लजीज थी। तो दो खाने के बाद उन्होंने हजरत उमर से अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, अगर थोड़ी और मुझे ये खजूर मिल जाए, बहुत ही मजे की हैं। तो हजरत उमर ने फरमाया कि ए मेरे भाई अली, अगर आपको अल्लाह के नबी दो से ज्यादा देते तो मैं भी आपको दो से ज्यादा खजूरें दे देता। अल्लाह, इस ख्वाब से पता चलता है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने कैसी फरासत, कैसे मनाजिर दिखाए, कैसी किस तरह का इल्म दिया होता है, किस तरह का फुरकान और फरासत दी होती है जो किसी के पास भी नहीं होती। तो ये फरासत इंसान को नसीब होती है जब वो तकवे वाली जिंदगी गुजारता। तो चार वादे अल्लाह ने मुत्तकी शख्स से कर दिए। पहला वादा, अगर उससे गुनाह हो गया तो अल्लाह माफ जल्दी कर देते हैं। दूसरा ये कि अल्लाह उसको फरासत अता फरमाते हैं। तीसरा वादा ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो किसी परेशानी में फंसेगा, अल्लाह उसको हर परेशानी में से रास्ता निकाल। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर परेशानी में से रास्ता निकाल देते हैं। इसलिए जब इंसान परेशान हो, ये ना सोचे, आजकल हमारी सोच अजीब हो गई है। हम कहते हैं जी किसी ने कुछ कर दिया है, रिस्क की परेशानी है, किसी ने हमारा रिस्क बांध दिया है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, भाई किसी की जादू की वजह से, किसी की हसद की वजह से, किसी का कुछ पढ़ने की वजह से हमारे साथ ये मामला हो गया है। तो हम इस चीज में खुश हैं कि हम दूसरों को ब्लेम कर दें, मगर सच्ची बात यह है कि अल्लाह ने ये फैसला कुरान में सुना दिया कि अगर तुम्हारी जिंदगी तकवे पे है, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर मुश्किल में से रास्ता निकल जाएगा। तो अगर मुश्किल में से रास्ता नहीं निकल रहा तो किसी और को ब्लेम ना करें, किसी और पे इल्जाम ना लगाएंगे, इसने कुछ कर दिया होगा, फला रिश्तेदार मेरे ऊपर जादू कर रहा है, बल्कि ये सोचें कि कौन सा गुनाह हो रहा है। बड़े बड़े अंबियाए कराम जब मुसीबत में फंसे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी ने कुछ कर दिया है, बल्कि उन्होंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, मैंने गड़बड़ की है। हालांकि अल्लाह के नबी जो होते हैं, अंबियाए कराम जो होते हैं, तो मासूम होते हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हमने कोई गड़बड़ नहीं की होगी, कोई और है जिसने कर दिया ये मामला, इसलिए हमारी जिंदगी में परेशानी आई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, ये कैसे परेशानी आ गई, ना हम शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना जिना करते हैं, ना नमाज छोड़ते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि ये तमाम चीजें नहीं करते तो एक बहुत ही अच्छी बात है, मगर गुनाह सिर्फ ये तो नहीं है, बहुत सारे जहां जाहिरी गुनाह है, बातनी गुनाह भी बड़े सारे होते हैं। ये नाशुक्री करना, ये भी एक बड़ा गुनाह है, बल्कि अल्लाह ताला ने नाशुक्री पर तो अजाब का वादा किया है। दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना रखना, छुपी हुई नफरत रखना, ये भी बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में आता है कि शबे कदर बड़े से बड़े गुनाहगार को अल्लाह ने माफ करना है, मगर जिसके दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना हुआ, उसको माफ नहीं करना है। इसी तरह रियाकारी करना, दिखलावे के लिए इबादत करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये सिर्फ गुनाह नहीं है दिखलावा, ये शिर्क है। तो ये भी तो हम करते हैं। दूसरों को हकारत से देखना, और ये औरतों में ये आजकल बहुत ज्यादा ये काम हो गया है, ये दूसरों को बहुत ही हकारत से देखते हैं। जी देखें, इनको कोई तहजीब नहीं, इनको कोई तमीज नहीं, इनको कपड़े पहनने का भी तमीज नहीं है, इनके अंदर तमद्दुन नहीं है। ये आराम से हम दूसरों को कह देते हैं, ऐसी हकारत से दूसरों को डील करते हैं जैसे दूसरा कुछ भी नहीं, और फिर हम कहते हैं कि जी हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो ये परेशानी क्यों आ गई, ये जो दूसरों को हकारत से देखना, अपने आप को बड़ा समझना, इसको तकब्बुर कहते हैं। और तकब्बुर पे अल्लाह ने अजाब का वादा किया है दोनों जहानों में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी ही सही, दुनिया में भी मिलेगी। एक है वालदैन की नाफरमानी और दूसरा है तकब्बुर, ये दूसरों को हकारत से देखना। अल्लाह ने पसंद किया कि इंसान अपने आप को हकारत से देखे, अपनी गलतियां पे नजर रखे, न थी अपने ऐबों की जो खबर, रहे देखते औरों के ऐबों में, न थी अपने ऐबों की जो खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपने ऐबों पे जो नजर, निगाह में कोई बुरा ना रहा। तो कमाल ये नहीं है कि दूसरों के ऐबों को देख लिया, कमाल तो ये है कि अपने ऐबों को देख लिया। तो चार वादे मुत्तकी शख्स के साथ अल्लाह ने कुरान में कर दिए। पहला वादा ये है कि अल्लाह उसके गुनाह को जल्दी माफ फरमाएंगे, दूसरा वादा ये कि अल्लाह उसको फरासत अता फरमाएंगे, और तीसरा वादा ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हर तंगी में से रास्ता निकाल देंगे, और चौथा वादा ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिस्क में बरकतें ना निछावर कर देंगे। वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तकू, गरीब बस्ती वाले ईमान ले आते और मुत्तकी बन जाते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल, हम आसमान और जमीन की बरकतों के खजाने उन पे निछावर। तो जब इंसान तकवा इख्तियार करता है तो रिस्क में भी बरकत आती है, ऐसी बरकत कि किसी के सामने फिर हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हर काम इंसान का हो जाता है। ये बरकत जो है ये भी तकवे के साथ ही है। तो जो गुनाह से बचता है वो अपने लिए ये जिंदगी भी आसान कर लेता है, आखिरत को भी आसान कर लेता है। शर्त ये है कि तकवे वाली जिंदगी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत में तकवे वाली जिंदगी नसीब फरमाए। इस मुबारक आयत का असल पैगाम यही है कि जब एक वादा कर लिया, चाहे वो काफिरों से किया, उसको पूरा करो। तकवा यही है, जो तकवा इख्तियार करता है। ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला मुत्तकी से बड़ी मोहब्बत करता है, बल्कि उसकी इज्जत बढ़ा देता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और वादा भी किया है, तो चार आपको सुनाए, पांचवा वादा भी है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, कि अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला है। तो जितना गुनाहों से बचेंगे, हर तरफ इज्जतों के डंके बजेंगे। तो कई मरतबा हम नाराज होते हैं कि जी फला शख्स मेरी इज्जत नहीं करता है। खवातीन कई मरतबा अपने शोहर से कहती हैं कि तूने मेरी इज्जत नहीं करवाई। कोई किसी की इज्जत पे डाका नहीं डाल सकता, ये इंसान के गुनाह है जो इंसान की इज्जत को कम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ नसीब फरमाए। यहाँ आके आज की क्लास मुकम्मल होती है, या जिस एक मरतबा तर्जुमा कर देता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीम, इल्लल्लज़ीना आहदतुम, मगर वो जिन्होंने तुमसे अहद किया, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से, सुम्मा लम यनकुसूकुम शैअन, और फिर उनका कोई कसूर नहीं था, वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन, और उन्होंने नहीं की मदद तुम्हारे मुकाबले में किसी एक की, फअतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, तो आप फिर उनकी अहद की मुद्दत को पूरा करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं। यहाँ आके आज की क्लास मुकम्मल होती है, दुआ फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.